नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के एपिसोड 4 में। एक्चुअली ये एपिसोड पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे पुनर्जन्म भीष्म पितामह के जन्म लेने में एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभा रहा है। ठीक उसी तरह अब हम जानेंगे कि ये पुनर्जन्म भीष्म पितामह के मरने में भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो इससे पहले कि मैं कहानी बताऊं, आप लोगों को पता होगा कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब कि वो जब तक खुद से नहीं चाहेंगे तब तक उनको मौत नहीं आएगी, और ये वरदान उनको उनके पिता ने दिया था, मतलब राजा शांतनु ने दिया था। तो अभी भीष्म पितामह के साथ हैं उनकी सौतेली माँ सत्यवती, उनका सौतेला भाई विचित्रवीर और दूसरा सौतेला भाई चित्रांगद, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब कहानी की शुरुआत होती है काशी राज्य से। काशी के राजा अपनी तीनों राजकुमारियों के लिए स्वयंवर रखते हैं। अब राजकुमारियों के नाम है अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अब ये चूंकि स्वयंवर है तो सारे बड़े बड़े योद्धा, राज्य के जितने भी वीर हैं, जितने एलिजिबल बैचलर्स हैं, जितने भी राजकुमार लोग हैं, तो सबको न्योता भेजा जाता है स्वयंवर में भाग लेने के लिए, सिवाय हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर मतलब भीष्म पितामह के राज्य में इन्विटेशन नहीं जाता है। अब काशी के राजा का हस्तिनापुर इन्विटेशन नहीं भेजने के पीछे दो रीज़न होता है। एक तो था कि उस टाइम पे ये सबको पता था कि विचित्रवीर जो राजकुमार हैं हस्तिनापुर के, वो हमेशा बीमार रहते थे, मतलब वो फिजिकली फिट नहीं थे, तो एक ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि वो पुरानी कुछ घटनाओं के कारण अपना बदला लेना चाहते थे भीष्म पितामह से, उनको नीचा दिखा के। और उस टाइम पे ऐसा माना भी जाता था कि अगर आप इन्विटेशन नहीं भेज रहे हो स्वयंवर का, इसका मतलब आपने इंसल्ट किया है, आपने बराबर नहीं समझा कि मुझे भेजा जाए, तो ये रीज़न होता है। अब हस्तिनापुर में भीष्म पितामह को इस स्वयंवर के बारे में पता चलता है, और वो भी उस टाइम अपने सौतेले भाई विचित्रवीर के शादी के लिए लड़कियां देख रहे थे। जब उन्हें ये पता चलता है कि काशी राज्य से उन्हें इनविटेशन नहीं आया, तो बट ऑब्वियस था कि उनको ये बहुत बड़ा इंसल्ट लगा। और सत्यवती से, जो उनकी सौतेली माँ होती है, उनसे ये बात वो डिस्कस करते हैं, तो वो भी इनको कहती है कि ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है। अब इस अपमान से बदला लेने के लिए भीष्म पितामह उस टाइम के सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे, वो क्या करते हैं, काशी पहुंच जाते हैं और स्वयंवर में जाके वहाँ पे तीनों राजकुमारियों को वो किडनैप कर लेते हैं, और किडनैप करके वापस हस्तिनापुर ले आ रहे होते हैं। अब चूंकि भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा होते हैं कि उनसे कोई लड़ने का हिम्मत ही नहीं करता है, सिवाय एक राजा का, वो राजा थे राजा शल्व। अब राजा शल्व भीष्म पितामह से लड़ने का एक रीज़न था क्योंकि वो उन तीनों राजकुमारियों में से एक राजकुमारी से प्यार करते थे, राजकुमारी अम्बा से। लेकिन अभी फाइट होता है, वो उतने बराबर की लड़ाई नहीं कर पाते हैं और आखिर में हार जाते हैं, और भीष्म पितामह जोर ज़बरदस्ती सबको हरा के, सब योद्धा उद्धा को जैसा भी है हरा वरा के, तीनों राजकुमारी को लेके हस्तिनापुर आ जाते हैं। अब हस्तिनापुर आने के बाद वहाँ पे तीनों राजकुमारियों से पूछते हैं कि क्या उनको पसंद है विचित्रवीर, उनसे शादी करना चाहते हैं क्या, तो अंबिका और अम्बालिका ये दोनों मान जाती हैं, लेकिन अम्बा जो राजकुमारी रहती हैं वो कहती हैं कि मैं राजा शल्व से प्यार करती हूँ और मैं स्वयंवर में उन्हीं को अपना पति भी मान चुकी थी। तो भीष्म पितामह क्या करते हैं, उनको पूरा इज्जत के साथ राजा शल्व के पास भेज देते हैं। तो राजकुमारी अम्बा जब राजा शल्व से मिलने के लिए जा रही होती है तो उनके मन में ख्याल रहता है कि भाई राजा शल्व से उनकी शादी होगी, तो ये सोच के वो राजा शल्व के पास पहुंचती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है क्योंकि राजा शल्व क्या करते हैं, इनको अपनाने से मना कर देते हैं। राजा शल्व का कहना होता है कि उनको हरा के भीष्म पितामह अम्बा को ज़बरदस्ती लेके चला गया था और अभी वो वापस कर रहा है, मतलब दान दे रहा है। तो वो ये कहते हैं कि मुझे दान दी हुई वस्तु नहीं चाहिए, और ये बोल के वो ठुकरा देते हैं। तो अम्बा बहुत अपसेट हो जाती है, वो उनको समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको तो ज़बरदस्ती उठा के लेके गए थे भीष्म पितामह। तो खैर जितना भी एक्सप्लेनेशन देती है वो राजा शल्व एक भी नहीं मानते हैं और वो मना कर देते हैं कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, ये इंसल्टिंग है। तो राजकुमारी अम्बा क्या करती हैं, वापस भीष्म पितामह के पास जाती है, उनको कहती है कि राजा शल्व शादी नहीं कर रहे हैं मेरे से, चूँकि आपने मुझे ज़बरदस्ती स्वयंवर से उठा के लेके आए थे, तो अब आप मेरे से शादी कर लीजिए। अब भीष्म पितामह तो बोलते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता शादी, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का कसम खाया हुआ है। अब ये कह के भीष्म पितामह भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो राजकुमारी अम्बा वहाँ से निकल के जितने भी बाकी लोग जो योद्धा लोग थे उनके पास वो जाती हैं शादी का प्रपोजल लेके, जो लोग स्वयंवर में भी आए थे उनके पास भी जाती है, लेकिन कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब ये उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होता है, ऑब्वियसली कोई भी होता तो उसको लगता ही लगता। तो राजकुमारी अम्बा ये सोचने लग जाती है कि उनका जो ये दुर्दशा हुआ है उसका रीज़न कौन है, मतलब मेन किसके कारण हुआ है। क्या उनके पिता हैं जो काशी के राजा हैं जिन्होंने स्वयंवर बन रचाया था, या भीष्म पितामह है जो इन सबको तीनों बहन को किडनैप करके लेके गए, या राजा शल्व हैं जो इनसे शादी करने के लिए मना कर देते हैं। तो आखिर में उनको लगता है कि भीष्म पितामह ही मेन रीज़न है जिसके कारण उनका ये दुर्गति हुआ है, और वो कसम खाती हैं कि जब तक भीष्म पितामह उनको जब तक मार नहीं दे तब तक ये चैन से नहीं बैठेगी। और फिर ये सोच के वो अपने घर भी नहीं जाती है, और फिर वहाँ से वो जंगल में चली जाती है। तो जंगल में कुछ ऋषि मुनि लोग मिलते हैं, तो ऋषि मुनि लोग को अपना कहानी सुनाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, भीष्म पितामह ने ऐसा ऐसा किया है। अब ऋषि मुनि लोगों को बहुत दया आता है, तो ऋषि मुनि लोग इनको कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाके ऋषि परशुराम से मिलो, क्योंकि वो गुरु हैं भीष्म पितामह के। अब वो अगर समझाएंगे भीष्म पितामह को तो वो ज़रूर मान जाएंगे। तो ये कहती हैं कि ठीक है। तो ये जाती हैं फिर परशुराम से मिलने के लिए, उनसे मिलती है, उनको बताती हैं कि ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ है उनके साथ भीष्म पितामह के कारण, उनकी ये सिचुएशन अभी ऐसा हो गया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा और मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि तुमसे शादी कर ले। अब ये कह के परशुराम जाते हैं भीष्म पितामह के पास, दोनों से अब भीष्म पितामह उनको मिलते हैं, उनसे उनका आदर सत्कार करते हैं। अब फिर ये सब हो जाने के बाद फिर परशुराम उनको बोलते हैं कि भाई तुम शादी कर लो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो शादी, तुम उसको किडनैप करके लाए हो, इसके कारण उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। लेकिन भीष्म पितामह अब तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कसम खाया है तो मैं उसको निभाऊंगा और मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा ही करूंगा। अब परशुराम जो थे वो बहुत ऐसे गुस्से वाले गुरु थे, मतलब उनके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन, मतलब उनको मायने रखता था। तो फिर ये उनको बहुत इंसल्टिंग लगा कि उनका शिष्य उनकी बात को नहीं मान रहा है, तो ये बहुत अपमान था उनको ऐसा लगा। तो वो कहते हैं कि एक तो तुमने गलत किया है एक नारी के साथ, ऊपर से जब तुमको सुधारने का मौका मिल रहा है तो वो भी तुम नहीं कर रहे हो, तो एक काम करो फिर तुम एक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ठीक है, रेडी हो जाते हैं। तो फिर अब परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में कहते हैं कि एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे बराबर के टक्कर के थे, कोई नहीं हार रहा था। तो लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जब भीष्म पितामह ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं और परशुराम भी कुछ एक ऐसा अस्त्र निकाल लेते हैं, सॉरी, कि उस टाइम पे अगर दोनों अस्त्र अगर चल जाता तो शायद से पूरा दुनिया ख़त्म हो जाता। तो जितने देव देवी नारद जितने लोग हैं सबको आके बीच में इनको रोकते हैं कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो पूरा विनाश हो जाएगा और सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो परशुराम वापस राजकुमारी अम्बा के पास जाते हैं और वो उनसे ये बोल के माफ़ी मांगते हैं कि वो उनको न्याय नहीं दिला पाए। अब राजकुमारी अम्बा को बहुत बुरा लगता है, उनको लगता है कि अरे जब गुरु ही जब अपने शिष्य को दंडित नहीं कर सका तो बाकी तो किसी नॉर्मल इंसान से एक्सपेक्ट करना बहुत ही गलत होगा। तो वो यही बहुत उदास होके वो फिर क्या करती हैं कि वो भगवान कार्तिक को वो याद करती हैं और उनके नाम का तपस्या करने लग जाती हैं, क्योंकि कार्तिक भगवान जो हैं वो लड़ाई के देवता हैं, तो वो उनके नाम पे तपस्या करती हैं। कार्तिक भगवान प्रकट होते हैं तो राजकुमारी अम्बा उनको सारा कहानी सुनाती है और बोलती हैं कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि भीष्म पितामह का विनाश हो सके। तो कार्तिक भगवान उनको एक कमल के फूल का माला देते हैं। अब ये कमल के फूल में वरदान ये था कि ये माला हमेशा फ्रेश रहेगा, मतलब कभी नहीं मुरझाएगा, और इस माला को जो भी पहनेगा उसके अंदर ये शक्ति आ जाएगी कि वो भीष्म पितामह को मार सके। तो राजकुमारी अम्बा खुश हो जाती हैं। अब ये माला लेके वो फिर से बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे राजाओं के पास जाती है कि कोई इनको न्याय दिला दे। लेकिन भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा थे कि भीष्म पितामह का नाम सुन के सब पीछे हट जाते थे, सबको डर लगता था कि नहीं उनसे जीतना मुश्किल है। तब एक एक करके सब जगह से हताश हो जाती हैं राजकुमारी अम्बा। तो लास्ट में ये जाती हैं पांचाल, वहाँ पे जो राजा द्रुपद हैं उनके पास भी मदद के लिए बोलती हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करें और मेरे को ऐसा वरदान मिला है। लेकिन राजा द्रुपद है वो भी मना कर देते हैं कि नहीं, भीष्म पितामह के अगेंस्ट में नहीं खड़ा हो सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हताश होके वापस वहाँ से जाने लग जाती है। तो ये जब वापस जा रही होती है तो क्या करती है कि महल के बाहर में एक पिलर में वो वही माला को टांग देती है और माला टांग के वो वहाँ से चली जाती है। अब राजकुमारी अम्बा इस स्थिति में होती है कि अब उनको लगता है कि अभी कोई नहीं है जो इनको न्याय दिला सके। तो इनको लगता है कि सिर्फ अब शंकर भगवान ही हैं जो हेल्प कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये उसके बाद एक ऐसा तपस्या करना शुरू कर दी जिससे कि पृथ्वी में बहुत भूचाल टाइप का आने लग गया, मतलब कि एक पैर पे खड़े होना, फिर एक टो पे खड़े होना तपस्या करती थी वैसे। और ये दिन भर में सिर्फ एक पत्ता खा के रहती थी, वो भी वो पत्ता जो खुद से पेड़ से गिर जाता था, ऐसा तोड़ के भी नहीं। तो वो दिन भर में एक पत्ता खा के एक पैर पे खड़े होके ये तपस्या करती थी। तो शंकर भगवान प्रकट होते हैं, शंकर भगवान को ये सब अपना दुख भरी कहानी सुनाती है और कहती है कि मुझे बदला लेना है भीष्म पितामह से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, तो वो जब तक खुद से नहीं चाहेगा तब तक वो मौत उनके पास नहीं आ सकती है। तो तुम्हारे लिए इस जन्म में पॉसिबल नहीं है और इसके लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो वो कहती है कि लेकिन अगर मैं अगले जन्म में मारूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, या फिर भीष्म पितामह को कैसे पता चलेगा कि उसके मौत का रीज़न क्या है। तो ये आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, एक ऐसा समय आएगा और एक ऐसा रीज़न रहेगा जिसके कारण तुम्हें वो चीज़ें, बातें, सारी बातें याद आ जाएगी अपने इस जन्म की। तो अभी राजकुमारी अम्बा के मन में बदला और हेट्रेड इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा उनके मन में भीष्म पितामह के अगेंस्ट में नफरत भरा हुआ था, कहते कि वो उसी टाइम पे जाके अपने आप में आग लगा लेती है और मर जाती है। लेकिन उनका जो दूसरा जन्म होता है वो दूसरा जन्म होता है राजा द्रुपद के घर में। अब यही वो पुनर्जन्म है जो कि भीष्म पितामह के मौत का रीज़न बनता है। तो राजकुमारी अम्बा का जो नया जन्म है वो होता है राजा द्रुपद के घर में, और वो एक लड़की के रूप में पैदा लेती है जिनका नाम होता है शिखंडिनी। शिखंडिनी बाद में शिखंडी बनते हैं, मतलब वो भविष्यवाणी भी था राजा को कि आपके यहाँ लड़की पैदा होगी जो बाद में लड़का बनेगा। और महाभारत के लड़ाई में जब शिखंडी पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अर्जुन का सारथी बनते हैं 10th day में, 10वें दिन पे। और उसी दिन भीष्म पितामह के अगेंस्ट में अर्जुन की लड़ाई हो रही होती है। तो भीष्म पितामह जैसे ही शिखंडी को देखते हैं वो अपना हथियार डाल देते हैं और इसी टाइम पे अर्जुन उन पे वॉर कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि भीष्म पितामह शिखंडी को देख के पहचान गए थे कि ये राजकुमारी अम्बा ही है जो नए जन्म में शिखंडी के रूप में आई है। और कुछ लोगों का कहना है कि भीष्म पितामह को पता था कि शिखंडी का जो जन्म है वो एक लड़की के रूप में हुआ था और ये लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं, ये कसम खाई थी, तो जिसके कारण वो हथियार डाल देते हैं। तो खैर, भले ही अर्जुन भीष्म पितामह को पूरा तीर से मारा या फिर उनको रथ से गिरा दिया या फिर उनको इतने सारे तीर मार दिए, लेकिन जो मेन रीज़न था भीष्म पितामह के हारने का या फिर उनके मरने का या फिर खुद से अपने मौत को गले लगाने का, जो भी कहें, वो रीज़न थी राजकुमारी अम्बा और उनका पुनर्जन्म, मतलब शिखंडिनी के रूप में, या यूँ कहिए मतलब शिखंडी के रूप में। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कैसे पुनर्जन्म भीष्म पितामह के मृत्यु में भी एक इम्पॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुँचाए हुए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनो यार में, ओनली विथ अमित रवानी।